بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔ ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم پویتر قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ آج آپ پویتر قرآن مجید کے سورہ معارج کی 19 سے لے کر 29ویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ منشی بڑا لوبھی ہے، جب اسے پیڑا اور کشتی ہوتی ہے تو چیخ پکار کرنے لگتا ہے، اور جب اسے دھن سمپتی مل جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، سوائے ان واسطوک نمازیوں کے کہ جو سدیف نماز میں اپنی آیو بتاتے ہیں اور جن کی سمپتی میں ایک اسپشٹ ادھیکار نردھارت ہوتا ہے۔ مانگنے والے دردروں اور نہ مانگنے والے ونچتوں کے لیے، اور جو لوگ پرلے کے دن کی پشٹی کرنے والے ہیں، اور جو اپنے پالنہار کے دنڈ سے ڈرنے والے ہیں، कि उनके पालनहार के दंड से कोई भी बचने वाला नहीं है और जो अपने आप को व्याभिचार से बचाते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आज गुरुवार है, जुलाई की 28, जिलहिज की 28 और मुर्दाद माह की 6 तारीख। कार्यक्रमों की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। पहले हम आपको विश्व समाचार सुनाएंगे, फिर राजनीतिक चर्चा पेश की जाएगी, उसके उपरांत साप्ताहिक कार्यक्रम सुनेंगे आप आज की बात, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सफल महिलाएं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हमारे इन कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, partstoday.com/hi। इन कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाओं को आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिज़वी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई के विनाशकारी परिणाम निकलेंगे। मुक्तदा सदर के समर्थकों ने इराकी संसद पर धावा बोला। ब्रिटेन ने विश्व में परमाणु युद्ध की संभावना जताई है। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा में सोनिया गांधी के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
राष्ट्रपति रईसी ने कहा है कि ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि ईरान के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी कार्रवाई का जवाब विनाशकारी होगा। सैयद इब्राहिम रईसी ने अपनी प्रांतीय यात्राओं के दौरान गुरुवार को पश्चिमी प्रांत हमादान का दौरा किया। उन्होंने सैन्य अधिकारियों और उनके परिजनों के एक समूह को संबोधित करते हुए कहा, ईरान की वर्तमान सैन्य शक्ति को देखते हुए अब किसी के भी दिमाग में उसके विरुद्ध कार्रवाई का विचार भी नहीं आएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की शक्ति पर क्षेत्रीय देश गर्व करते हैं और साथ ही सुरक्षा का आभास भी करते हैं। इब्राहिम रईसी का कहना था कि देश में सैन्य क्षेत्र में प्रगति के साथ ही ईरान की रक्षा शक्ति में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि शत्रु हमारी सैन्य क्षमता पर नजर रखे हुए है और उसने ईरान की सैन्य क्षमता का आभास भी कर लिया है। यही कारण है कि हमारे विरुद्ध कार्रवाई करने की वे हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि उनकी हार्दिक इच्छा यह है कि ऐसा ही हो।
ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि प्रतिबंधों को हटाने और परमाणु समझौते की बहाली के लिए तेहरान कूटनीति को जारी रखने का स्वागत करता है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को भी गंभीरता से कदम आगे बढ़ाना होगा। बुधवार को यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल से टेलीफोन पर हुई बातचीत में ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायन ने कूटनीति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए यूरोपीय संघ की हालिया पहल का स्वागत किया। मंगलवार को बोरेल ने कहा था कि यूरोपीय संघ ने परमाणु समझौते की बहाली के लिए एक नया मसौदा तैयार किया है। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख का कहना था कि मैं वार्ता के एक सूत्रधार के रूप में समझौते के लिए इस मसौदे को एक बेहतरीन विकल्प के रूप में देखता हूं। इसे आप एक संपूर्ण समझौता नहीं कह सकते, लेकिन ये सभी आवश्यक मुद्दों को संबोधित करता है और इसमें सभी पक्षों की आशंकाओं का ध्यान रखा गया है।
इराक के धर्मगुरु मुक्तदा सदर के हजारों समर्थकों ने प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन के खिलाफ बगदाद स्थित संसद भवन पर धावा बोल दिया। बगदाद के अति सुरक्षित इलाके ग्रीन जोन में स्थित संसद भवन पर जब प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला, उस वक्त इमारत में कोई मौजूद नहीं था। इमारत के अंदर सिर्फ सुरक्षा बल मौजूद थे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को अपेक्षाकृत आसानी से अंदर जाने दिया। प्रदर्शनकारी पूर्व मंत्री और पूर्व गवर्नर मोहम्मद अल सूदानी के नामांकन का विरोध कर रहे थे, जिन्हें ईरान समर्थक दलों का उम्मीदवार समझा जाता है। इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काजमी ने प्रदर्शनकारियों से तुरंत ग्रीन जोन से बाहर जाने की अपील की है।
ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि संसार में परमाणु युद्ध की संभावना फिर बढ़ने लगी है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्टीफन लवग्रोव का मानना है कि वर्तमान हालत के कारण संसार में परमाणु युद्ध की संभावना अधिक बढ़ती जा रही है। उन्होंने अमरीकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में दावा किया है कि परमाणु शस्त्रों को लेकर वर्तमान समय में विश्व में जो परिस्थिति बन रही है, उससे अब विश्व में परमाणु युद्ध की संभावना बहुत तेज होती जा रही है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इस केंद्र में अपने देश और अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम के बारे में मौन रखते हुए दूसरे देशों के परमाणु कार्यक्रमों पर निशाना साधा।
रूस के विदेश मंत्रालय ने अमरीकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के दावे को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इस दावे को रूस के विदेश मंत्रालय ने रद्द कर दिया कि इस देश के विदेश मंत्री के साथ उनका कोई संपर्क हुआ है। रूस के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार की सुबह एंटनी ब्लिंकन के उस दावे को रद्द कर दिया कि वे अपने रूसी समकक्ष के साथ संपर्क करना चाहते थे। वहां से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस बारे में अमेरिका की ओर से कोई भी आवेदन हमें नहीं मिला है। रूसी विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार संचार माध्यमों की रिपोर्टों से अलग हमें अमेरिका की ओर से ऐसा कोई आवेदन हासिल नहीं हुआ है जिसमें रूसी विदेश मंत्री के साथ वार्ता की बात कही गई हो।
इसराइल के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जायनी कमांडरों का मानना है कि अगले किसी भी युद्ध में इसराइल के पतन का गंभीर खतरा है। इसराइल ह्यूमन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल के कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों का कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ तनाव में वृद्धि के बाद युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। मौजूदा हालात में कोई भी लड़ाई इसराइल के वजूद के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इस अखबार के सैन्य मामलों के रिपोर्टर ने जानकार सूत्रों के हवाले से बताया है कि युद्ध के लिए सेना की तैयारी को लेकर मतभेद कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2006 के युद्ध के बाद से ही छोटे मोटे अभियानों को छोड़कर इसराइली सेना कोई बड़ा ऑपरेशन करने में नाकाम रही है।
कोरियाई युद्ध को समाप्त करने वाले युद्ध विराम के उपलक्ष्य में उत्तर कोरिया में मनाए जाने वाले विजय दिवस के अवसर पर इस देश के नेता ने कहा है कि उनका देश अमेरिका से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। किम जोंग उन का कहना था कि हमारे सशस्त्र बल किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमारा देश परमाणु युद्ध में अपना बचाव करने और हमले का जवाब देने के लिए भी तत्पर है। हाल ही में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने कहा था कि सन 2017 के बाद से पहली बार उत्तरी कोरिया परमाणु परीक्षण के लिए तैयार है। बुधवार को दक्षिणी कोरिया के विदेश मंत्री ने कहा था कि अगर उत्तरी कोरिया परमाणु परीक्षण करता है तो उसके खिलाफ अधिक मजबूत प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि पार्टी की अध्यक्षता के साथ आज लोकसभा में अपमानजनक व्यवहार किया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि गुरुवार को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा के कई मंत्रियों और सांसदों ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के साथ अमर्यादित व्यवहार किया। पीटीआई के अनुसार कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा के भीतर ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है जिसे सोनिया जी को चोट लग सकती थी। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि भाजपा के सांसदों तथा मंत्रियों ने सोनिया गांधी को चारों ओर से घेर लिया था। भाजपा की महिला सांसदों ने तो उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया, साथ ही पूर्व सांसदों ने भी अमर्यादित व्यवहार का प्रदर्शन किया। गोगोई के अनुसार अपने मंत्रियों और नेताओं के इस दुर्व्यवहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी।
ईसाइयों के वरिष्ठ धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने कैथोलिक चर्च में स्कूलों में हुए यौन दुराचार के मामले में कनाडा के मूल निवासियों से क्षमा याचना की है। पोप की ओर से जारी माफीनामे में कहा गया है कि कनाडा के मूल निवासियों को बलपूर्वक ईसाई समाज में समाहित करने की से उनकी संस्कृति नष्ट हो गई, उनके बच्चों को अपने परिवार से अलग रहना पड़ा। पोप ने कहा कि मैं उन सारे ही अत्याचारों के लिए माफी मांगता हूं जो ईसाइयों की ओर से कनाडा के मूल निवासियों पर ढाए गए।
कर्नाटक में कुछ मुस्लिम संगठनों ने दर्जन भर से ज्यादा निजी कॉलेज खुलने के आवेदन दिए हैं। इन संगठनों का कहना है कि वो कॉलेज होंगे जहां मुस्लिम छात्राओं के लिए हिजाब पर प्रतिबंध नहीं होगा। गौरतलब है कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसी के साथ रेडियो थेरन से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। लेबनान की राजधानी बैरूत के इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में एक सेमिनार हुआ जिसमें गदीरिया आर्टिकल कंपटीशन में हिस्सा लेने वालों को सम्मानित किया गया। अहमद मसूद और तालिबान के बीच अफगानिस्तान के परवान प्रांत में वार्ता जारी रखने तक युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त महीने में अमेरिकी सेना के बाहर निकल जाने के बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पंजशीर के इलाके में तालिबान और अहमद मसूद के संगठन अफगानिस्तान राष्ट्रीय प्रतिरोधी मोर्चे के बीच लड़ाई भड़क उठी थी। भारत में विपक्षी सांसदों और सत्ताधारी भाजपा के सांसदों में छिड़ा राजनीतिक विवाद गहन रूप धारण करता जा रहा है। भाजपा के सांसदों ने कहा है कि कांग्रेस को राष्ट्रपति और देश से माफी मांगनी चाहिए। लेबनान की राजधानी बैरूत के इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में एक सेमिनार हुआ जिसमें गदीरिया आर्टिकल कंपटीशन में हिस्सा लेने वालों को सम्मानित किया गया। रिपोर्ट पेश कर साथी अहमद अब्बास।
लेबनान की राजधानी बैरूत के इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में एक सेमिनार आयोजित हुआ जिसमें गदीरिया आर्टिकल कंपटीशन में हिस्सा लेने वालों को सम्मानित किया गया, जिसमें कई ईसाई भी शामिल हुए। प्रबंधकों में से एक वरिष्ठ धर्मगुरु का कहना था कि सम्मेलन में चार देशों लेबनान, सीरिया, इराक और ईरान के लेखकों और विचारकों ने भाग लिया। लगभग 100 आर्टिकल अलवी कल्चर के बारे में सेमिनार को भेजे गए। इनमें से 14 सर्वोत्तम आर्टिकल चुने गए। रोचक बात यह थी कि अलवी कल्चर पर लेख लिखने वालों में ईसाई लेखकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और शानदार लेख तैयार किए।
अल इमाम अली,
एक ईसाई लेखक ने कहा कि हजरत अली की जीवन शैली ईसाईयत और अन्य धर्मों से संबंध रखने वालों के बीच एक अच्छा नमूना है। ईसाईयत और इस्लाम के बीच आपसी संवाद के लिए एक अच्छी बुनियाद हजरत अली अलैहिस्सलाम की जीवनी है। اس کارکرم میں جارج شکور، سلیمان کتانی اور مشل جادی کو چار دشکوں تک حضرت علی اور دوسرے اماموں کی جیونی پر ادھین کرنے اور ان کے بارے میں جانکاریاں لوگوں تک پہنچانے کے لیے سمانت کیا گیا اور انہوں نے کارکرم میں حصہ لیا۔ عیسائی لیکھک کا کہنا تھا کہ یہ کارکرم دنیا والوں پر پاکیزہ اماموں کے گہرے اثر کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ امام علی اور ان کے ونش سے سمبندھ رکھنے والے اماموں نے انسانیت کے لیے اللہ کی معرفت اور شکشاؤں کے دروازے کھول دیے۔ ایک مہیلا لیکھکا کا کہنا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی شکشائیں دوست دشمن سب کے لیے ہیں، یہ بند راستے کھولنے والی اور ششٹاچار سکھانے والی ہیں، یہ حضرت علی کے آکرشنوں میں سے ایک ہے۔ چنندہ لیکھوں کو ایک کتاب کی شکل میں عربی اور انگریزی بھاشاؤں میں پرکاشت کیا جائے گا۔ آنے والے مہینوں میں بیروت میں حضرت علی علیہ السلام کی سیرت یا جیون شیلی کے آدھار پر اسلامی مسلکوں اور عیسائیت کے بیچ سنواد کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ الگ الگ دھرموں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا کارکرم ہے۔ بیروت سے آئی آر آئی بی کے لیے حسن عظیم زادے کی رپورٹ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کارکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کارکرم راجنیتک چرچا۔
احمد مسعود اور طالبان کے بیچ افغانستان کے پروان پرانت میں وارتا جاری رکھنے تک یدھ ورام پر سہمتی بن گئی ہے۔ غور طلب ہے کہ پچھلے سال اگست مہینے میں امریکی سینا کے باہر نکل جانے کے بعد طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد پنجشیر کے علاقے میں طالبان اور احمد مسعود کے سنگٹھن افغانستان راشٹریہ پرترودھی مورچے کے بیچ لڑائی بھڑک اٹھی تھی۔ ساتھی مسم عباس،
احمد مسعود اور طالبان کے بیچ افغانستان کے پروان پرانت میں وارتا جاری رہنے تک یدھ ورام پر سہمتی بن گئی ہے۔ غور طلب ہے کہ پچھلے سال اگست میں امریکی سینا کے باہر نکل جانے کے بعد طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد پنشیر کے علاقے میں طالبان اور احمد مسعود کے سنگٹھن افغانستان راشٹریہ پرتیرودھی مورچے کے بیچ لڑائی بھڑک اٹھی تھی۔ طالبان نے پاکستان کی وایو سینا کی مدد سے پنشیر پر بھی قبضہ کر لیا تھا، لیکن طالبان کی اور سے احمد مسعود کے ساتھ وارتا کے پرستاؤ کو سویکار کرنے کا مطلب ہے کہ طالبان ابھی بھی مسعود کو اپنا سب سے شکتیشالی اور پربھاوشالی ورودھی مانتے ہیں اور بات چیت دوارا ان کے ساتھ مدبھیدوں کا سمادھان چاہتے ہیں۔
بھارت میں وپکشی سانسدوں اور ستاداری بھاجپا کے سانسدوں میں چھڑا راجنیتک وواد گہن روپ دھارن کرتا جا رہا ہے۔ بھاجپا کے سانسدوں نے کہا ہے کہ کانگریس کو راشٹرپتی اور دیش سے معافی مانگنی چاہیے۔ پوری جانکاری دے رہے ہیں دلی سے شمشاد کاظمی۔
بھارتی سنسد میں جہاں مہنگائی، جی ایس ٹی اور دوسرے مدوں پر چرچا کی مانگ کو لے کر وپکشی دلوں نے آج بھی ہنگامہ جاری رکھا اور سدن کی کاروائیوں میں ویاودھان اتپن ہوا، وہیں بھارت کی پہلی آدیواسی مہیلا راشٹرپتی دروپدی مرمو کے لیے کانگریسی سانسد ادھیر رنجن چودھری دوارا ایک اشوبھنیے ٹپنی کے ورودھ ستاروڑھ بھاجپا کے سانسدوں نے بھی سنسد کے بھیتر اور باہر ورودھ جتایا اور کانگریس ادھیکش سونیا گاندھی سے معافی مانگنے کی مانگ کی۔ ادھیر رنجن چودھری نے سویکار کیا کہ راشٹرپتی کے پرتی ایک ویڈیو کلپ میں انہوں نے ایک شبد کا غلطی سے استعمال کیا ہے، لیکن اس کے لیے معافی مانگنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یدی معافی مانگنی ہوگی تو وہ راشٹرپتی سے معافی مانگیں گے، ان پاکھنڈیوں سے نہیں۔ انہوں نے بھاجپا پر آروپ لگایا کہ وہ جان بوجھ کر رائی کا پہاڑ بنانے کا پریاس کر رہی ہے اور کانگریس کی مہیلا ادھیکش پر نشانہ سادھ رہی ہے۔
کانگریسی نیتا ادھیر رنجن چودھری نے کہا،
ایک بار بائی ڈیفالٹ چونک ہوئی ہے، صرف ایک بار نکل چکی تو کیا کرے، ابھی مجھے پھانسی پہ لٹکانا ہے تو لٹکا دو، دیکھیں بی جے پی کیا کرتا ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کہاں بی جے پی کہاں معافی مانگیں گے، بی جے پی سے کیوں معافی، بی جے پی کون ہوتے ہیں؟ ارے چونک سے ایک لفظ نکل چکے، چونک سے اس لیے میں کل ہی پتروکاروں کو کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ایک بار چونک ہوئی ہے، آپ کل، میں کافی سارے میڈیا والوں سے بات کیے، کبھی نہیں ایسا کیا، پہلے کہا راشٹرپتی، اسی ساتھ ساتھ نکل چکا راشٹرپتی نے، پچھلے معافی مانگنے کی سوال ہی نہیں، معافی کس لیے، چوک ہو گئے بھائی، آپ بودی میڈیا والوں کو خوشی کرنے کا میرا کھمتا نہیں ہے، آئیے نا ایک ساتھ آئیے آپ کو نہیں، سب کے ساتھ جواب دیں گے۔ کل اور پرسو لگاتار ہم لوگ جب بجے چوک کی طرف ہمارا پردرشن جاری رکھے تھے، پرسو بھی ہم سے پوچھا گیا، کل بھی ہم سے پوچھا گیا پتروکار کی طرف سے، میڈیا والوں سے، کہ آپ کہاں جانے کا کوشش کر رہے ہیں۔ پرسو بھی میں نے کہا تھا کہ راشٹرپتی بھون ہم لوگ جانا چاہتے ہیں، راشٹرپتی سے ملنا چاہتے ہیں ہمارا بات رکھنے کے لیے، کل بھی یہ نہ ہو بتائی، کل بھی میں نے یہ کہا کہ ہم راشٹرپتی جی بھون جانا چاہتے ہیں، اور راشٹرپتی بولنے کا ترنت بعد مجھ سے نکل گیا، راشٹرپتی جی کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ اسی سمے یہ پتروکار بات سنتے ہی نکل چکے، میں ان کو ڈھونڈنے کا کوشش کیا لیکن دیکھا نہیں، کیونکہ میں اسی سمے ان کو کہہ دیتے کہ یہ غلط سب نکل چکے ہیں، آپ اس کو اس کو توجہ دیا کرو، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہندوستان کی راشٹرپتی چاہے وہاں براہمن ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ آدیواسی ہو، جو بھی ہو، وہ ہمارے لیے راشٹرپتی۔ اچانک ایک بات نکل چکی ہے تو میں کیا کروں، ایک بار نکل چکی، صرف ایک بار تو ایک بار، یہ چوک ہوئی ہے بائی ڈیفالٹ، بٹ سم رولنگ پارٹیز ممبرز اینڈ دا پارٹی ان اے ڈیلیبریٹ ڈیزائن ٹرائنگ ٹو میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل، یہ درباگیہ کی بات ہوتے ہیں۔ میرا بات تو سن لیا کرو، وہ جو ویڈیو آپ دیکھ لیا کرو، میں سب کو یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ میں جس میڈیا والوں کے یہ ویڈیو دکھا وہ سب دیکھ لیا کرو نا۔
کیندری منتری سمرتی ایرانی نے اسے لے کر کانگریس پر کڑا پرہار کیا اور کہا کہ دیش کے سروچ سمویدھانک پد پر آسین ایک آدیواسی اور غریب پریوار کی مہیلا کا اس پرکار انادر کرنا ان کی گریما پر پرہار کرنا ہے، جس کے لیے کانگریس کو راشٹرپتی اور دیش سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس مدعے کو لے کر کانگریس کے سانسدوں نے بھی سنسد میں جم کر ہنگامہ کیا اور وواد اس سمے اور بڑھ گیا جب سونیا گاندھی اور سمرتی ایرانی کے بیچ تیکھی نوک جھونک ہوئی۔ ادھر سنسد میں مہنگائی اور دوسرے مدعوں پر چرچا کی مانگ کو لے کر دونوں سدنوں میں ہنگامہ کرنے اور اویوستھا اتپن کرنے کے آروپ میں وبھن وپکشی دلوں کے 20 سانسدوں کو راجیہ سبھا اور 4 سانسدوں کو لوک سبھا سے پورے مانسون سطر کے لیے نلمبت کر دیا گیا ہے۔ نلمبت کیے گئے سانسدوں نے باری باری سے سنسد بھون پریسر میں 50 گھنٹے کا ویروھ پردرشن شروع کیا ہے۔ دھرنا دے رہے سانسدوں نے بدھ کی رات سنسد پریسر میں کھلے آسمان کے نیچے بتائی، کیونکہ پرشاسن نے انہیں ٹینٹ لگانے کی انومتی نہیں دی۔ ویروھ پردرشن کر رہے سانسدوں میں کانگریس، ڈی ایم کے، ٹی ایم سی، تلنگانہ راشٹر سمیتی، سی پی آئی ایم، سی پی آئی اور عام آدمی پارٹی کے سانسد شامل ہیں۔ یہ سانسد مہنگائی اور جی ایس ٹی پر چرچا کو لے کر اپنے نلمبن کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دلی۔
تو شوتو، راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں پر سماپت ہوا۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، ابھی آپ نے ہماری راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم سنا۔ اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ساپتاہک کاریکرم آج کی بات۔
आज की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश की नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की बढ़ती संख्या के बारे में। हालिया दिनों भारत की सरकार ने संसद में एक दस्तावेज पेश किया, जिससे ये पता चला कि भारत की नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और गत 7 साल के भीतर 9.5 लाख से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। इस खबर के सामने आने के बाद एक बहस छिड़ी कि भारत की नागरिकता छोड़ने के कारण क्या हैं। भारत के गृह मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। संसद में पेश किए गए दस्तावेज में कहा गया कि इन लोगों ने निजी कारणों से नागरिकता छोड़ने का फैसला किया। सबसे ज्यादा 78,284 लोगों ने अमेरिकी नागरिकता के लिए भारत की नागरिकता छोड़ी। इसके बाद 23,533 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और 21,597 लोगों ने कनाडा की नागरिकता ली। चीन में रह रहे 300 लोगों ने वहां की नागरिकता के लिए भारत की नागरिकता छोड़ी और 41 लोगों ने पाकिस्तान की नागरिकता ली। वर्ष 2020 में नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 85,256 थी और वर्ष 2019 में 1,44,017 थी। वर्ष 2015 से 2020 के बीच 8 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। 2020 में इन आंकड़ों में कमी देखने को मिली, लेकिन इसके पीछे की वजह कोरोना को बताया जा रहा है। राजनीतिक टीकाकार रजत सेठी इस रुझान के कुछ कारण गिनवाते हैं। नौकरी, काम के अच्छे अवसर और भारत के कानून में दोहरी नागरिकता की गुंजाइश न होना उनकी नजर में इसके मुख्य कारण है।
देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर दिस। आई पर्सनली फील दैट देयर हैज बीन अ बैकलॉग ऑन द यूएस साइड स्पेसिफिकली। द रिपब्लिकन्स हैड लार्जली लाइक रिड्यूस्ड द इमिग्रेंट एप्लीकेशंस फॉर सिटीजनशिप एंड देयर वाज अ ह्यूज बैकलॉग व्हिच आई थिंक द डेमोक्रेट्स आर क्लीनिंग अप। दैट्स वन रीजन। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वेस्ट हैव गॉन थ्रू रिफॉर्म्स इन देयर इमिग्रेशन पॉलिसीज। Australia and Canada being two, and UK, by the way, they've also joined the list, who have come out with a point-based system to basically streamline human resource coming to that country. Now, so you will see that there will be people who would be going for personal reasons that was mentioned, and jobs is one of the personal reasons why they go. They apply for citizenship outside into various countries in the West. And a lot of them end up renouncing Indian citizenship because India does not allow for a dual citizenship scenario. So the only way they can do that is through this way. But over the past 5, 6, 7 years, when the startup scene in India has really picked up, we see lots and lots of diasporas coming in.
कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने इस मामले में जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की।
सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट फ्रॉम द बीजेपी गवर्नमेंट दैट भारत तो ऐसा देश था जहां पर देव अवतरित होते थे। व्हाई हैव 9.23 लाख पीपल क्विट दिस कंट्री एंड गॉन ओवरसीज रिनाउंसिंग देयर सिटीजनशिप। It's one thing to go for greener pastures. It's one thing to renounce your citizenship. In the last 7 years, 361 people on an average every day have relinquished their Indian passport. If you have an outlet to leave this country today, people are preferring to relinquish their Indian citizenship because of two reasons. First, a completely ruined economy that does not give you the ecosystem to grow professionally or any prosperity possibilities in the future, and second, the kind of polarized atmosphere this country is seeing.
वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुखप्रीत सिंह का मानना है कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वहां से पलायन ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरने का प्रयास किया।
फैक्ट्स पे जाना पड़ेगा। कांग्रेस रूल्ड पंजाब सबसे ज्यादा रीजन रहा है वहां से मूवमेंट का। वहां पंजाब में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, पहले इनको ये देखना पड़ेगा। चलो शुक्र है परमात्मा का कि आज ये संस्कृत के श्लोक इनको याद होने लग गए क्योंकि लोगों ने इनके मन में डाला है।
कुछ लोग कहते हैं कि वे भारत से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और भारत की नागरिकता नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का कानून नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि भारत के पासपोर्ट पर आप बिना वीजा अभी 60 देशों में जा सकते हैं, दूसरे कई देशों की तुलना में ये काफी कम है। पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 199 की लिस्ट में इस समय 87वें नंबर पर है। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात भारत का कानून कहता है कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि भारत अगर दोहरी नागरिकता का प्रावधान लाता है तो नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में कमी आ सकती है। विदेश में बसे और वहां की नागरिकता से अब संपन्न हो चुके भारतीय लोगों के लिए एक खास तरह की सुविधा का नाम है ओसीआई कार्ड। ओसीआई का मतलब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। दरअसल दुनिया के कई देशों में दोहरी नागरिकता की सुविधा है, लेकिन भारतीय नागरिकता कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो अमेरिका, ब्रिटेन या कैनेडा जैसे देशों की नागरिकता ले चुके हैं, लेकिन उनका भारत से जुड़ाव भी है। इन लोगों को भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद भारत आने जाने के लिए वीजा लेना पड़ता था। ऐसे ही लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए 2003 में भारत सरकार PIO कार्ड का प्रावधान लेकर आई। PIO का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये कार्ड पासपोर्ट की ही तरह 10 साल के लिए जारी किया जाता था। इसके बाद भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर 2006 में हैदराबाद में OCI कार्ड देने की घोषणा की। काफी समय तक PIO और OCI कार्ड दोनों ही चलन में रहे, लेकिन 2015 में PIO का प्रावधान खत्म करके सरकार ने OCI कार्ड का चलन जारी रखने की घोषणा की। OCI एक तरह से भारत में जीवन भर रहने, काम करने और सभी तरह के आर्थिक लेन देन करने की सुविधा देता है। साथ ही OCI धारक व्यक्ति जब चाहे बिना वीजा के भारत जा सकता है। OCI कार्ड जीवन भर के लिए मान्य होता है। आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मिन शाह इस मुद्दे को अलग अंदाज में उठाते हैं।
आई वुड लाइक टू स्टेट टू फैक्ट्स। दिस ट्रेंड ऑफ इंडियंस लीविंग अब्रॉड हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस 2014। इफ द नंबर्स विद मी आर राइट, द नंबर्स देन वर अराउंड 1.1 लाख, इट बिकेम 1.3, 1.35 एंड नाउ इट्स रीच्ड 1.6। लेट मी स्टेट अनदर फैक्ट। यू नो हु आर द अदर टू टॉप नेशंस इन द वर्ल्ड फ्रॉम वेयर पीपल आर लीविंग एंड मास? We are at number 2. Number 1 is China. Number 2 is India. Number 3 is Russia. Just think about the company we are in at the international level. These are countries where civil liberties are under a deep threat.
वहीं भारत के पूर्व अनुभवी डिप्लोमेट मंजू सेठ का मानना है कि भारत में भारी टैक्स सहित कई वजहें हैं जिनके चलते भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं।
इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया हैज बीन कैरिंग ऑन गोइंग ऑन फॉर वेरी वेरी मेनी इयर्स। नंबर्स में बी इंक्रीजिंग। आई थिंक देयर आर वन और टू रीजंस फॉर दैट। एज यू मेंशनड, ईज ऑफ बिजनेस इज एन इशू इन इंडिया। द टैक्स रेट्स आर वेरी हाई and that is a major reason why the HNIs are wanting to leave India and invest and diversify. So they would like to invest outside, establish these their entities in many tax haven sort of countries. So the other advantage that they have, of course, a travel advantage is a big advantage. If they live in the US or if they get citizenship of a foreign country, they can travel to many countries visa free.
भारतीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक ओसीआई कार्ड के धारकों के पास भारतीय नागरिकों की तरह सभी अधिकार हैं, लेकिन चार चीजें वे नहीं कर सकते: चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं डाल सकते, सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद पर नहीं हो सकते, खेती बाड़ी जमीन नहीं खरीद सकते। जाने माने बुद्धिजीवी और लेखक प्रोफेसर अपूर्वानंद कुछ अनुभवों और उदाहरणों की बात करते हुए बिल्कुल अलग प्रकार का विमर्श पेश करते हैं।
बीमारी पुरानी है, लेकिन अगर आप इधर की बात देखें, यानी वैज्ञानिक शोध की बात देखें, फर्ज कीजिए कि कोई वैज्ञानिक शोध करना चाहता है भारतवर्ष में, उसकी उसके पास कितनी संभावनाएं रह जाएंगी, कितनी संभावनाएं है ना। उसी तरह उच्च शिक्षा के मामले में देख लीजिए, उच्च शिक्षा में अब आप कितने स्वतंत्र ढंग से यहाँ काम कर सकते हैं। दूसरे मामलों में भी देख लीजिए, अगर आप भारतीय समाज को देख लीजिए, उसमें शांति, उसमें सौहार्द, जिसमें आप चैन से अपना उद्योग धंधा भी चला सकते हैं, इसको भी देख लें, तो वे सारे लोग जो स्वयं इस सत्ता को बनाए रखने में काफी पैसा खर्चा कर रहे हैं, उन्हें खुद मालूम है कि उनका भविष्य बहुत अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि देश एक लगातार अशांति के दौर से गुजर रहा है। तो अनेक वजह हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अलग अलग स्तरों में भारत छोड़ रहे हैं, और इसलिए कि अब भारत की कहानी में कोई जान बची नहीं रह गई लगती है लोगों को।
विनय तिवारी जाने माने विचारक और विश्लेषक हैं, वो अलग अंदाज में इस मुद्दे को उठाते हैं।
देखिए, माइग्रेशन एक ऐसा मुद्दा है जो सोशल स्टडीज में दशकों से एक बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हर सोशियोलॉजिस्ट का। माइग्रेशन इंटर स्टेट इंटर कंट्री माइग्रेशन भी होते हैं और इंटरनेशनल माइग्रेशंस भी होते हैं, और आज से नहीं, ये आजीवन काल से होते आ रहे हैं और चिरंतन काल तक होते रहेंगे। सवाल ये है कि लोग किसी अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के किसी और नेचुरल हैबिटेट में क्यों जाते हैं। तीन चार कारणों से जाते हैं। बेहतर अवसर के लिए जाते हैं, बेहतर एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, भारत में पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते हैं, और अब एक नई कैटेगरी जनरेट हुई है जो पिछले 20 सालों में जनरेट हुई है, विच इज कॉल्ड द HNIs, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास पैसा है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां आप सिटीजनशिप अब खरीद सकते हैं। मेरे लिए ज्यादा चिंता की वक्त समस्या ये होगी कि भारत सरकार को हाँ ये जरूर देखना चाहिए कि पिछले एक डेढ़ से दो सालों में कुछ खबरें आ रही हैं, नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, कोई अलार्मिंग नहीं है, कोई इसमें मैं पॉलिटिकल एंगल नहीं दे रहा, लेकिन ऐसी नंबर संख्या जरूर आ रही है कि जो इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, भारत में स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए सरकार बहुत दावे कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो अपने आप को भारत के बाहर रजिस्टर कर रहे हैं, या तो सिंगापुर में रजिस्टर कर रहे हैं या हांगकांग में कर रहे हैं, कई लोगों ने वियतनाम तक में रजिस्टर किया अपने आप को।
भारत में जब ये मुद्दा उठा तो कुछ दिनों तक इस पर बहस चली, मगर उसके बाद ये विषय समाप्त हो गया। दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक तो प्रतिभा पलायन और दूसरे पूंजी का देश से निकलकर दूसरे देश में पहुंच जाना। नागरिकता छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेने वाले भारतीयों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उनमें अधिक संख्या स्किल्ड लेबर की है, और दूसरी बात यह है कि इनमें बहुत से लोग वे हैं जो विदेशों में जाकर निवेश कर रहे हैं, यानी वे आर्थिक रूप से भी सक्षम हैं। विचारकों की नजर में ये चीज भारत के लिए नुकसानदेह है। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अब पेश है अगला कार्यक्रम, सफल महिलाएं।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। सैयद मीसम और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, सोमवार 19 अक्टूबर वर्ष 2020 को एक खबर आई कि जिसने ज्ञान विज्ञान की दुनिया को दुखी कर दिया। खबर थी कि इस दौर के प्रमुख रहस्यवादियों में से एक ईरान की वरिष्ठ रहस्यवादी डॉक्टर लाले बख्तियार का देहांत हो गया। ईरानी सभ्यता के कई हजार वर्षों पुराने इतिहास में संस्कृति और विज्ञान कला का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक आयाम है। इस दौरान इस संस्कृति के इतिहास में प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे हैं। इनमें से कुछ मूल्यवान व्यक्तित्व और प्रयासों को सैकड़ों वर्षों बीत जाने के बाद भी वैज्ञानिक हलकों में स्वीकार किया जाता है। अब भी इनमें से कुछ सांस्कृतिक विचारकों ने देश के दूर दराज के हिस्सों में लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए बड़े प्यार और स्नेह के साथ ईरानी संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने महान प्रयासों के साथ इसकी सेवा की है। इनमें डॉक्टर लाले बख्तियार की प्रभावशाली सांस्कृतिक हस्ती सैकड़ों अन्य लोगों में से एक है।
सोमवार 19 अक्टूबर वर्ष 2020 को जब ये खबर आई कि डॉक्टर लाले बख्तियार का निधन हो गया है तो न केवल ईरान बल्कि दुनिया के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में गम की लहर दौड़ गई। डॉक्टर बख्तियार मौजूदा दौर में दुनिया के प्रसिद्ध रहस्यवादियों में से एक थीं। वो एक प्रतिष्ठित और प्रख्यात विचारक थीं, साथ ही उन्होंने अपने पीछे कई रचनाएं छोड़ी हैं। उनके मूल्यवान कार्यों में पवित्र कुरान मजीद, नहजुल बलागा और मोजमुल मुफारिस शब्दकोश के अंग्रेजी अनुवाद के अलावा कई रहस्यवाद के बारे में लिखे गए शोध हैं।
डॉक्टर लाले बख्तियार ने इतिहास में स्नातक की डिग्री के साथ साथ दर्शन शास्त्र और परामर्श मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री और शैक्षिक मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। डॉक्टर बख्तियार अपने विशाल ज्ञान और महान पेशेवर और शैक्षणिक स्थिति के बावजूद बहुत विनम्र थी। वह अपने छात्रों से हमेशा कहती थी कि ज्ञान की खोज में निरंतर प्रयासरत रहो। उन्होंने ईरान के चिकित्सा इतिहास में भी बहुत योगदान दिया और इब्न सीना के कानून नामक 5 खंडों के संग्रह का सरल अंग्रेजी में अनुवाद किया। डॉक्टर लाले बख्तियार का जन्म वर्ष 1938 में तेहरान में हुआ था। उनके पिता अबुल कासिम बख्तियार ईरान के पहले ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने अमेरिका के विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी।
डॉक्टर अबुल कासिम बख्तियार तेहरान विश्वविद्यालय के मेडिकल विभाग के संस्थापक थे। उन्होंने और उनकी पत्नी हेलेन जेफरीज ईरान की पहली सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स के साथ मिलकर ईरानी चिकित्सा समुदाय को बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की। डॉक्टर लाले बख्तियार अपनी ईसाई माँ की देखरेख में पली बढ़ी हैं। उन्होंने धार्मिक स्कूल में भी शिक्षा प्राप्त की है। उनके व्यक्तित्व से साफ दिखाई देता है कि वो कितनी धार्मिक कार्यों में सक्रिय और मोमिना थी। डॉक्टर लाले बख्तियार ने 19 वर्ष की आयु तक चर्च में आयोजित होने वाली प्रार्थनाओं में भाग लिया, लेकिन 19 साल की उम्र में उन्होंने कैथोलिक धर्म को त्याग दिया। उन्होंने कॉलेज में इतिहास की पढ़ाई की और ग्रेजुएशन के बाद ही विवाह कर लिया।
डॉक्टर लाले बख्तियार 24 वर्ष की आयु में अपने पति और 2 छोटी बच्चियों के साथ ईरान वापस आई। ईरान में अपने जीवन की शुरुआत से ही उन्होंने सैयद हुसैन नस्र के दर्शन और रहस्यवाद की कक्षाओं में भाग लिया। नस्र की शिक्षाओं के साथ वह इस्लामी रहस्यवाद और सूफीवाद में बहुत रुचि रखती थी। उनकी इस्लाम के प्रति बढ़ती रुचि के कारण 26 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। उनके अनुसार इस्लाम के बारे में जो बात उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करती थी वह इस्लाम की शिक्षाओं में सभी मनुष्यों के लिए एक समान प्रेम था। डॉक्टर लाले बख्तियार कहती हैं कि जब आपके सामने किसी चीज की तस्वीर स्पष्ट हो जाती है तो उस काम को करने में जो मजा आता है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी तरह इस्लाम की तस्वीर मेरे सामने साफ हो चुकी है, उसके संदेश का उद्देश्य मुझे पता चल चुका था। इसलिए इन सब के बाद जब मैं अल्लाह की इबादत करती थी तो उसका एहसास ही कुछ अलग होता था। वे कहती हैं कि नमाज और रोजा इंसान के दिलों दिमाग में अल्लाह की याद को ताजा रखता है।
डॉक्टर लाले बख्तियार ने 25 वर्षों तक ईरान में जीवन बिताया। इस अवधि में उन्होंने इस्लाम, रहस्यवाद और इस्लामी कला के बारे में शोध किया और अपने पति के साथ मिलकर ईरानी वास्तुकला के बारे में सेंस ऑफ यूनिटी नामक एक पुस्तक लिखी। ये पुस्तक ईरानी वास्तुकला के बारे में लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक के जरिए सामान्य रूप से ईरान की पारंपरिक वास्तुकला की जड़ों का पता लगाया जा सकता है। विशेष रूप से इस पुस्तक के माध्यम से ईरानी और ईरानी इस्लामी आर्किटेक्चर परंपराओं और अन्य कलाओं, साहित्यिक और दार्शनिक विषयों के बारे में बेहतरीन जानकारी हासिल की जा सकती है।
डॉक्टर लाले बख्तियार ने डॉक्टर अली शरियती, प्रोफेसर उस्ताद मुर्तजा मुताहरी की पुस्तकों को और कुछ न्याय शास्त्रीय पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। ईरानी दार्शनिक और शोधकर्ता 1988 में अपने भाई की वित्तीय सहायता के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका लौट गई और कुछ वर्षों के बाद मैक्सिको विश्वविद्यालय में शैक्षिक मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और फिर नैदानिक उपचार और परामर्श में व्यस्त हो गई। उन्होंने वर्ष 1991 में पारंपरिक नैतिकता और मनोविज्ञान संस्थान नामक एक परामर्श केंद्र की स्थापना की।
डॉक्टर बख्तियार उस केंद्र में अपनी नवीन पद्धति के आधार पर सामान्य परामर्श सेवाओं के अलावा मुस्लिम अप्रवासी महिलाओं और लड़कियों को विशेष परामर्श और मनोचिकित्सा सेवाएं प्रदान करती थीं, क्योंकि उन्हें खुद पूरी तरह से दो अलग वातावरण में रहने का अनुभव था। इसलिए वे अप्रवासी परिवारों की किशोर और युवा लड़कियों की कठिन स्थिति को अच्छी तरह से समझती थीं। एक ओर जहां अपने समाज संस्कृति को छोड़कर अप्रवासी लड़कियां एक ऐसे अमेरिकी संस्कृति और समाज में प्रवेश करती थीं कि जो उनके लिए पूरी तरह अजनबी होता था, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक मुस्लिम परिवार में परवरिश की वजह से उनके परिजन उन्हें अमेरिकी संस्कृति का आदि नहीं होने देना चाहते थे।
इन युवा लड़कियों को घर और सार्वजनिक स्थानों का दो अलग अलग वातावरण परेशान कर देता था और यही चीज कारण बनती थी कि उनको मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचे। ऐसी स्थिति में रहने वाली युवा लड़कियों को बहुत ही तेज और ज्यादा मेंटल चोट पहुंची थी, जिसके कारण उनके और उनके परिवारों के लिए भावनात्मक संकट पैदा हो जाता। इस बीच डॉक्टर बख्तियार ने मनोचिकित्सा की अपनी पद्धति को लागू करके इन मुस्लिम अप्रवासी लड़कियों के जीवन में धार्मिक विचार और अभ्यास और आधुनिक अमेरिकी जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है।
ईरानी विद्वान और शोधकर्ता ने 21वीं सदी की शुरुआत में एक कठिन और नए रास्ते की शुरुआत की। डॉक्टर बख्तियार ने देखा कि पश्चिम में इस्लाम को पेश करने के लिए बहुत काम करने के बावजूद इस्लाम का सही और सकारात्मक चेहरा अभी तक अजनबियों के सामने नहीं आया था। अमेरिकियों के लिए इस्लाम की प्रमुख छवि एक कठोर और हिंसक धर्म थी, जिसका आधुनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था। लाले बख्तियार ने यह दिखाने की कोशिश की कि इस्लाम को चरमपंथ से जोड़कर देखना या दिखाना यह इस्लाम की गलत व्याख्या है। उन्होंने इस्लाम के प्रकाश में जीने के अपने 40 वर्षों के ज्ञान और अनुभव पर भरोसा करते हुए और अरबी भाषा से अपनी परिचितता के आधार पर पवित्र कुरान करीम का अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया।
इस महान और जिम्मेदारी भरे कठिन कार्य को अंजाम देने के लिए डॉक्टर लाले ने अपने अन्य सभी काम छोड़ दिए। उन्होंने बिना रुके 7 साल तक केवल पढ़ा, शोध किया और खोज की और साथ ही साथ पवित्र कुरान का अनुवाद करती रहीं। डॉक्टर लाले बख्तियार का मानना है कि पवित्र कुरान सभी मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए है और किसी विशेष समूह या किसी खास जमाने के लोगों के लिए यह सीमित नहीं है, क्योंकि इस महान ईश्वरी किताब का रचयिता अल्लाह है जो सभी प्राणियों का स्वामी है। इस सिद्धांत पर अमल करते हुए डॉक्टर लाले ने कुरान का अनुवाद करते हुए अल्लाह शब्द के बजाय अंग्रेजी शब्द गॉड का इस्तेमाल किया, जिसे हर अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति किसी भी विश्वास के साथ और किसी भी समूह से हो इसका अर्थ समझता है।
डॉक्टर बख्तियार द्वारा अंग्रेजी भाषा में किया गया पवित्र कुरान का अनुवाद वर्ष 2007 के अप्रैल महीने द ग्रेट कुरान शीर्षक के तहत प्रकाशित हुआ था, जिसका वैज्ञानिक हलके में भव्य स्वागत हुआ। बख्तियार ने पवित्र कुरान की आयतों के मुख्य संदेशों को शोध से समझकर अंग्रेजी भाषी पाठकों के लिए बहुत ही मूल्यवान अनुवाद किया। अमेरिका और पश्चिमी देशों के मुस्लिम और गैर मुसलमानों ने इस अनुवाद को पसंद किया। और इसे पवित्र कुरान का अब तक का सबसे अच्छा अंग्रेजी अनुवाद बताया। लेकिन अलहजर विश्वविद्यालय के कुछ मुफ्ती और अन्य अरब मुस्लिम विद्वानों ने इस अनुवाद का विरोध भी किया है। यही कारण है कि डॉक्टर आले बख्तियार ने अपने अनुवाद की चुनौतियों और बचाव पर कई वर्षों तक लेख और भाषण दिए हैं।
डॉक्टर बख्तियार ने पवित्र कुरान का अनुवाद करने की वर्षों बाद तक शिकागो में प्रोफेसर नसर की निगरानी में कई अमर रचनाओं को अपने पीछे छोड़ा है। वह अपनी अंतिम सांस तक तर्क संगत इस्लामी विचारों के प्रति वफादार रहे। उनकी इस्लाम के प्रति वफादारी का सबूत उनके द्वारा अंतिम दिनों में कुर्निक साइकोलॉजी ऑफ द सेल्फ शीर्षक के तहत लिखी गई किताब से अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने अपनी इस किताब में मनोवैज्ञानिक शोध के लिए इब्ने सीना और मुल्ला सदरा के मनोविज्ञान के सिद्धांतों और विचारों का व्यापक रूप से उपयोग किया है। इस ईरानी रहस्यवादी विद्वान के अंतिम शोध में पवित्र कुरान के दृष्टिकोण से अली इब्ने अबी तालिब के उपदेशों, पत्रों और भाषणों पर निबंध है। लाले बख्तियार ने इस्लाम पर 25 अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। डॉक्टर लाले बख्तियार इंसानों से प्यार करती थीं और अपने जीवन की सभी घटनाओं को ईश्वर की मर्जी के तौर पर देखती थीं। सभी इंसानों के लिए उनका संदेश था, कोशिश का दामन कभी नहीं छोड़ो, आध्यात्मिक और नैतिकता के साए में रहो।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारा आज का प्रयास आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने विचार हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsiribir। तो दोस्तों, इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आपसे अनुमति चाहते हैं। खुदा हाफिज़।